الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. مش لتندي نوسف نفس بگفتگو کی جا رہی ہے، اور نفس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہ یہ نفس جو ہے اس کی اصلاح جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ گو کہ لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں اصلاح نفس کے لیے، اور مشائخ کی خدمت میں آنے میں اور اس اصلاح کے تعلق قائم کرنے میں سالک کو تصفیہ قلب جلدی نصیب ہوتا ہے، دل کی صفائی جلدی نصیب ہوتی، مگر یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ ایک بہت ہی لمبا کام ہے۔ تو اس نفس سے متعلق اکابرین کی جو عبارتیں ہیں یہ ان صبح کی مجالس میں پچھلے 3 دنوں سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور کیونکہ اس پہ اکابرین نے خوب گفتگو فرمائی ہے تو اس ٹاپک پہ اگلے چند دن گفتگو رہے گی۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز جو ہم نے عرض کی وہ یہ کہ تصفیہ قلب یہ آسان کام، نسبتاً آسان کام، مگر تزکیہ نفس یہ ایک مشکل کام۔ تصفیہ قلب کہتے ہیں کہ انسان شیخ کے پاس آتا ہے تو اس کو قلب کی صفائی نصیب ہوتی ہے، عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، معمولات کرنا شروع کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو دل کی صفائی نصیب ہو گئی، گو کہ کئی مرتبہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر انسان نیک صحبت میں نہ آئے، مگر عام طور پہ سالکین جو مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انہیں یہ تصفیہ قلب نسبتاً جلدی نصیب ہو۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ انسان کے نفوس کے اندر جو باطنی امراض موجود ہیں، جن کو چھپے ہوئے گناہ بھی کہتے ہیں، جن کا تعلق دل کے جذبات کے ساتھ ہے، وہ بھی صاف ہو جائیں تو یہ ایک لمبا کام ہے۔ اور ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے تکبر ایک باطنی گناہ ہے، انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے، حسد ایک باطنی گناہ ہے، یہ بھی کوئی ظاہر میں نظر آنے والی چیز نہیں، کوئی شخص دیکھ کے ہمیں کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی چیز ہے۔ یا جیسے ریا ہے کہ ہم عبادت تو کریں مگر ہم یہ چاہیں کہ لوگ ہماری عبادت پہ ہماری بہت تعریفیں کریں، تو یہ چاہت پہ کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ اچھا یہ گناہ یہ کرتا ہے، ہمارے اندر کے گناہ ہے۔ یقینہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے چھپی ہوئی نفرت رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام جو گناہ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نفس کے ساتھ ہے، یا شہوت ہے، یا اس جیسے اور گناہ۔ تو پہلی بات ہم نے اکابرین کی عبارتوں میں سے جو آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ بڑوں کا یہ قول، مشائخ تصوف کا یہ قول ہے کہ تصفیہ قلب یہ سالک کو جلدی نصیب ہوتا ہے، تزکیہ نفس جو ہے یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، ایک لمبا کام ہے۔ اس حوالے سے ایک اور مثال بھی دی گئی کہ تصفیہ قلب جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شیشہ ہے اور اس شیشے کو آپ نے کپڑے سے صاف کر لیا تو جلدی ہو جاتا ہے یہ کام۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ ایک کپڑا ہے اور وہ کپڑا جو ہے پورا میلہ ہو گیا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے، اس پہ صابن لگایا جاتا ہے، اس کو رگڑا جاتا ہے، اس کو نچوڑا جاتا ہے، تب جا کے وہ پھر پاک ہوتا ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ये पहली बात, पहली इबारत अकाबरीन की, अकाबिर तसव्वुफ की आपके सामने रखी। दूसरी बात आपके सामने नफ्स से मुतालिक जो रखी गई कि नफ्स इंसान का दुश्मन है, नफ्स के अंदर बगावत है, नफ्स इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पे उभारता है, नफ्स भी उभारता है, शैतान भी उभारता है। तो मशायख ने फरमाया कि शैतान का तरीकाए कार उभारने का, गुनाह की तरफ ले जाने का मुख्तलिफ है, नफ्स का जो है वो मुख्तलिफ है। बल्कि शैतान जो है वो कमजोर दुश्मन है इस नफ्स के मुकाबले में। और इस हवाले से कुरान पाक की आयत भी आपके सामने रखी गई, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न कैद शैतान काना ज़ईफा, कि जो शैतान का जो मकर है, शैतान की जो चालें हैं तो कमजोर सी है। तो शैतान की चालें कमजोर क्यों और नफ्स की चालें तेज और जोरदार क्यों है? तो मशायख ने इस पर भी कलाम फरमाया और मशायख का कहना यह कि शैतान की वारदात यूं है कि इंसान के दिल में वसवसा डालेगा कि तुम ये गुनाह कर लो, और उस गुनाह का वसवसा आने पे अगर वो शख्स मान ले तो बहुत ही अच्छा है, शैतान खुश हो गया, नहीं मानता वो कहता ना ना शैतान की तरफ से मैंने ये नहीं करना है। जैसे कई मरतबा होता है इंसान को ये होता है कि यार अभी वक्त पड़ा है, शैतान कहता है वक्त पड़ा है अभी तू ठहर जा, अभी नमाज ना पढ़, पढ़ ही लेगा ना। और इंसान अगर ये समझ जाए कि नहीं ये शैतान मुझे दूर कर रहा है नमाज पढ़ने से, मैं अभी पढ़ ही लूं, तो शैतान पीछे हट जाएगा आप नमाज पढ़ लेंगे। और ये आम बंदा भी, कोई इसके लिए बहुत बड़ा शेख होने की जरूरत नहीं है इस शैतान का मुकाबला करने के लिए। मगर मशाइख ने फरमाया कि शैतान वसवसा डालता है, इंसान वसवसा कबूल नहीं करता, शैतान पीछे हट जाता है, मगर शैतान का मसला है कि शैतान फिर आपको किसी और गुनाह के अंदर डालने की दावत देगा, उसका पीछा नहीं छोड़ना है। हदीस पाक में आता है कि तुम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, तो उसका चाल, उसका मकर, उसका जो पीछे पड़ना है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। बस कहता है कि कर लो, नहीं करता है इंसान तो पीछे हट जाता, मगर वो भी किसी और गुनाह की तरफ लगाने की कोशिश करता है। नफ्स का तरीका है वारदात इससे मुख्तलिफ है कि नफ्स का जो तरीका है वारदात है कि वो एक गुना जिसके अंदर इंसान को लज्जत नसीब हो गई है, नफ्स खूब उसी तरफ तवज्जो दिलाएगा जब तक कि इंसान उस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो जाएगा। इसलिए नफ्स के जो चाल है और दाव है जोरदार है। इसलिए कई मर्तबा आम सा बंदा जो कि बहुत नेकी पे नहीं है वो भी शैतान के वसवसों से कई मर्तबा बच जाता है कि भाई बहुत ज्यादा नेकी वाली जिंदगी नहीं है, मगर उसको पता है अच्छा मुझे नमाज से जो रोक रहा है ना, इस वक्त शैतान ही रोक रहा है, मस्जिद जाने से रोक रहा है, मैं जाऊंगा ही। ये आम बंदा भी कई मरतबा उसको महसूस कर लेता है। अगर ये नफ्स का जो तकाजा है, नफ्स बार बार उसी गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाएगा, अच्छे अच्छे नेक लोग भी उस गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। तो कई मरतबा इंसान कहने को बहुत नेक, कहने को आलिम दीन, कई मरतबा कहने को हाफिज कुरान, कहने को मशाइख का बड़ा मुरीद है, कहने को मामूलात करने वाला, कहने को बयान करने वाला। और गलती वो करेगा जो बयान नहीं की जा सकती किसी के सामने, और वो इसलिए कि उसके नफ्स के अंदर उस गुनाह की चाहत है और नफ्स ने अपना दाव चला दिया। इसलिए मशाइख ने फरमाया कि शैतान के वसवसे तो कमजोर, नफ्स का दाव पेच बड़ा जोरदार है। तो दो बातें हमने की, एक तो नफ्स की इसलाह लंबा काम है, दूसरा नफ्स की जो दाव है वो जोरदार है शैतान के दाव के मुकाबले में। और पिछली मजालिस में हमने इसकी मिसालें आपके सामने रखी। और एक मिसाल हमने रखी कराची के एक ताजिर की, जिन्होंने अपने हालात खुद बताए कि बजाहिर नेक, अल्लाह ताला ने माल पैसा दिया, साल में 2-3 मरतबा हरमैन शरीफैन की जियारत भी होती, उलमा से बड़ी मोहब्बत, मस्जिद के साथ बड़ा ताल्लुक, और इस आजिज के साथ भी ताल्लुक, और ये दीनी ताल्लुक, तो यानी जाहिरन तो लोग यही समझते थे बड़ा नेक आदमी है, चेहरे पे सुन्नत भी है, सर पे टोपी भी है, मस्जिद में भी बड़ा वक्त लगता था, हरमैन शरीफैन की साल में 2-3 मरतबा ज्यारत कौन करता है, शायद ही कोई और, यानी यहां से कराची से जाना 2-3 मरतबा, नेकी इस तरह की है। मगर खुद फरमाते थे कि बस नफ्स को एक बुरी आदत लगी हुई थी, वो शराब पीने की, और हर तरह की नेकी करते थे, मगर कहते थे इस मामले में कोई मसला ही नहीं है। जिस वक्त तवज्जो ये हुई, कहीं पता चला कि यहां अवेलेबल है, वहां भागना है, क्योंकि नफ्स तवज्जो बार बार उस गुनाह की तरफ दिलवाता है। हत्ता के अपने हालात जिंदगी में उन्होंने कहा कि वो भी एक दिन आया, एक दिन सुबह सुबह फ्लाइट है कराची से जद्दा, यानी उमरे का सफर है, उससे पहले वाली रात ऐसा तकाजा हुआ कि पूरी रात शराब पीते हुए गुजार। जब नफ्स की इसलाह नहीं तो नफ्स बड़े उल्टे काम कर, यानी जाहिरन अगर किसी को ये बताया जाए कि एक बंदा है वो ये करता है, इतना ऊंचा गुनाह करता है जो आम बंदा करता ही नहीं है, कि ये क्या, ये कहां से नेक हुआ, मगर वो नेक है, बस उसके नफ्स के अंदर ये एक गलती है। और जब उस गलती की तरफ नफ्स बार बार तवज्जो दिलाता है, क्योंकि उसको लज्जत उस गलती की आ चुकी है, तो वो गुनाह कर बैठता है। इसी तरह कल की मजलिस में हमने एक मिसाल और भी दी, और वो ये है कि एक साहब थे, और उनके बारे में किसी ने शिकायत की कि जी ज्यादती करते हैं, तो एक आलिम दीन की उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ जब बैठे तो उनकी ऐसी नेकी सामने आई कि वो हैरान हो गए कि आम बंदा इस तरह से नेकी शायद ना ही कर सके जैसे ये करते हैं। कि इन्होंने बताया कि जी ये 90s की बात है, आज से 30-35 साल पहले, तो कहते मेरी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए थी, मेरे बैंक में 30-40 हजार रुपए बैंक में आता, पूरे महीने में वो खर्च हो जाता, कभी ये सूरत हाल मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगी कि 40 हजार रुपए से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ हो। और फरमाते हैं क्योंकि उस जमाने में अभी इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम से इतने ज्यादा फाल नहीं थे, तो उन्होंने फरमाया कि जी मेरे एक मरतबा बैंक अकाउंट में मैंने, और उस जमाने में ऐसे एप्स भी नहीं हुए, नहीं थे, बैंक में जाके पूछना पड़ता था कि जी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जाके पूछा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, उन्होंने कहा जी 2.25 लाख रुपए पड़े, मैंने कहा जी हो ही नहीं सकता, उन्होंने खुद बैंक वालों को बताया कि जी आपकी गलती है, मेरे अकाउंट में इतने नहीं है, मेरे अकाउंट में तो भाई 30-40 हजार रुपए आते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बैंक वालों ने थोड़ी देर बिठाया और चेक किया, उन्होंने कहा जी सर बहुत गलती हो गई, हमने थोड़ा सा लेजर में मिस्टेक कर दिया, जो भी कर दिया, एक मरतबा हो गया। फरमाते हैं कोई 10-11 महीने बाद, ये पता नहीं कितने चंद महीने बाद, फिर एक मरतबा इसी तरह बैंक गया अकाउंट बैलेंस मालूम करने के लिए, उन्होंने कहा सर आपके अकाउंट में 17 लाख रुपए पड़े हैं, फरमाते मैंने उनका अच्छा 17 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसी वक्त चेक लिखा 17 लाख रुपए का, उन्होंने कहा जी 17 लाख रुपए तो मुझे दे दें अभी, क्योंकि उनको पता था ये 17 लाख मेरे हैं ही नहीं। 17 लाख रुपए उस जमाने में 90s में लाकर उनके टेबल पे रख दिए। उन्होंने उस वक्त कहा कि तुमको क्या हो गया है बैंक वालों, ये मेरे नहीं है, मगर तुम्हें सिर्फ मैं तंबीह करने के लिए कह रहा हूं कि अभी लेके चले जाता तो तुम्हें नुकसान होता 17 लाख का, तो ये मेरा नहीं है, ये तुम गलतियां कर रहे हो, देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम। तो उनको समझाया कि तुम, मगर ये एक ऐसी नेकी है जो आजकल मफकूद है। तो वो जो आलिम दीन थे जिनको शिकायत की गई कि बड़ा जुल्म करते हैं, बड़े ज्यादती करते हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा नेक बंदा है कि अच्छे अच्छे नेक बंदा ये काम नहीं कर सकते जो ये कर रहा है। तो नेक आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, मगर जब उन आलिम दीन की करीबी दोस्ती हुई तो उन्होंने कहा कि जी एक गुनाह करता हूं और उस मामले में बच ही नहीं सकता, और वो जिना है। अल्लाह, तो कई मरतबा ये जो नफ्स का गुनाह है ये वो गुनाह जो नेक आदमी करता है। तो शैतान से बचाओ, शैतान के वार बहुत ही आसान, आम बंदा भी शैतान के वार से बच सकता है। और नफ्स किसी के पीछे पड़ जाए, खासे नेक आदमी को भी गुनाह में गलती में फंसा सकता है। आज की इस मजलिस में ये सारा पिछली मजालिस की सारी रीकैप हो रहा था, आज की मजलिस पे आते हैं। आपने कहा सुभान अल्लाह, आज की इस मजलिस में, बल्कि कल की मजलिस में हमने ये अर्ज किया कि मशायख की इस नफ्स से मुतालिक एक तीसरी इबारत है, और वो ये कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने भी बहुत बड़ा कमाल कर लिया। यानी नफ्स की इसलाह नहीं की, सिर्फ उसको समझ आ गई कि मेरा अंदर से नफ्स है कैसा, मैं असल में क्या इंसान हूं, उसने भी बड़ा कमाल कर लिया। चुनाचे मशायख का कौल है, मन अरफ नफ्सहु अरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो नफ्स की इसलाह तो बड़ा लंबा काम है, नफ्स की मार्फत, नफ्स को सिर्फ पहचान लेना ये है असल में क्या, यही बहुत बड़ा कमाल है। किसी शायर ने कहा, मसहफी हम तो समझते थे कोई जख्म होगा, मसहफी हम तो समझते थे कोई जख्म होगा, तेरे दिल में तो काम बहुत रफू का निकला। हम तो समझते थे कि कोई इतना मसला नहीं है, अच्छी खासी नेकी चली रही है, जब इस रास्ते पे लगे तो पता चला कि अंदर तो बहुत सारा काम खराब हुआ है। तो नफ्स से मुतालिक तीसरी इबारत मशायख की यही कि जिसने नफ्स को पहचान लिया वो भी बड़ा ही बाकमाल शख्स है। और नफ्स को पहचानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कई मरतबा नफ्स की जो इंसान की अंदर की जो बुराई है ना, इंसान मानना भी नहीं चाहता है। जिस तरह दरख्त को अपने फल भारी नहीं लगते, उस तरह इंसान को अपने ऐब जो है वो भारी नहीं लगते, दूसरों में ऐब उसको अच्छी तरह से नजर आ जाएंगे मगर अपने अंदर ऐब नजर नहीं आएगा। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक सालिक ने खत लिखा कि हजरत मेरी बीवी जो है ना, नाशुक्री बहुत है। और फिर उसने लिखा कि जाहिर है हजरत हदीस में जो आ गया कि औरत नाकिसुल अकल है, तो जाहिर है उसने फिर ये नाशुक्री ही करनी है। तो अपने दिल का जो भड़ास थी वो हजरत के खत में उसने निकाल दिया कि हजरत बड़ी नाशुक्री है, नाकिसुल अकल है, और होगी भी सही। तभी तो वो लिख रहा है। मगर हजरत ने बड़ा, अल्लाह ताला ने उनको हिकमत दी थी, उलमा उनको हकीमुल उम्मत भी फरमाते थे, तो उन्होंने खत लिखा कि वो तो नाकिसुल अकल है, उसने नाशुकरी कर ली, तुम तो कामिलुल अकल थे, तुमने ऐसी बीवी पे क्यों शुक्र नहीं अदा किया। तो कई मर्तबा अपने नफ्स को पहचानना जो है, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो नफ्स को पहचानने की वजह नहीं जो है वो इसलिए बनती है कि इंसान कबूल, वो कहता है इसमें तो है गलतियां, मुझ में नहीं है गलती। आप आज किसी को बड़ा स्ट्रेट फेस के साथ, बेगम को नहीं, बेगम को तो खैर आप बोलेंगे तो वो तो कहेगी चल तू अपने आप को देख मुझे क्या कह रहा है। मगर किसी भी शख्स को आप जाके कहें, आम बंदे को जो सुलूक के साथ ताल्लुक नहीं रखता कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, वो नाराज होगा, उसका पहला जो रिएक्शन होगा वो कहेगा भाई ये क्या। वो इसलिए कि इंसान तैयार ही नहीं है कि मैं अपने अंदर के या अपनी गलतियों को कबूल करूं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम है कि इंसान अपने नफ्स की मार्फत हासिल कर ले। जिसने इस नफ्स की मार्फत हासिल कर ली वो भी अल्लाह वाला है मशाइख के नजदीक। इसीलिए तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया तो कहती थी ये सुल्तानुल औलिया, अल्लाह वालों में भी बड़े अल्लाह वाले हैं। और कहीं जा रहे तो किसी ने आवाज लगाई, ओ रे आकार। तो उनकी इस आवाज लगाने पे ये नाराज ही ना हुए, यानी हम जैसा कोई होता हम कहते हो इतने सुल्तान और औलिया को ये आवाज लगा रहे हो तो ओ रयाकार। तो और कुछ ना करते तो हम तो शायद ये कहते कि यार बेअदब आदमी है, तो बहुत ही खराब इंसान है। मगर हजरत ने ये आवाज सुनी तो हजरत ने फरमाया कि मेरे भाई अभी तो तुझे मेरा ये की ऐप पता चला है कि मैं रयाकार हूं, कभी मेरे पास आ तुझे बताओ कि क्या अंदर का हाल हुआ। तो जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने वाकई बड़ा कमाल कर लिया। तो कई मर्तबा इंसान की तबीयत यह है कि वो दूसरों की गलतियों को बहुत अच्छी तरह से मानता है, अपनी गलतियों को मानता नहीं है। अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देगा तो फिर दूसरों की गलतियां उसको नजर आना कम हो जाए। न थी अपने ऐबों की जो खबर, रहे देखते औरों के ऐबों उधर। न थी अपने ऐबों की जो खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने ऐबों पे जो नजर, निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो जब इंसान के अपने ऐबों पे नजर पड़ती है ना कि जी मैं यूं गड़बड़ करता हूं और मेरे अंदर की चाहतें और मेरे अंदर की गंदगी ऐसी है, कि दूसरों के साथ भी नरमी करता है कि अगर इसने भी ये गड़बड़ कर ली तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नफ्स को पहचान लेने की बड़ी, ना पहचानने की बड़ी वजह कि इंसान तैयार ही नहीं है कि वो अपने ऐब को तस्लीम कर ले। मगर को नफ्स को ना पहचानने की एक बड़ी वजह यह है कि ये नफ्स है भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मशायख ने फरमाया कि नफ्स की, उन्होंने इबारत जो यूज की है कि नफ्स के अंदर शरारत है, ये नफ्स अपने आप को आपको पहचानने भी नहीं देगा, ये नफ्स चाहता भी यही कि आप उसको पहचान ना सके ताकि वो बगावत करता रहे। तो इसलिए नफ्स के अंदर शरारत भी है और इसकी शरारत को पहचान लेने वाला बड़ा मास्टर है, बड़ा कोई जोरदार किस्म का समझदार आदमी है, इस फील्ड का बड़ा है वो। इसलिए मशाइख ने फरमाया कि इस्लाह बहुत दूर की बात, अगर नफ्स की इस्लाह हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। नफ्स को पहचान लेना ये बड़ा कमाल है, मगर सच्ची बात तो यह है कि नफ्स को जो पहचानेगा वही फिर कुछ इस्लाह का मामला भी कर सकता है। जिस मर्ज को इंसान पहचानता नहीं तो उस मर्ज का इलाज कैसे कर सकता है। इस हवाले से जो मशहूर वाकया बयान किया जाता है, और ये वाकया सुना के आज का बयान मुकम्मल करूंगा। दो बातें कह रहा था और दो बातें क्या 50 बातें हो गई हैं, मगर एक आखिरी बात इस बात को सिर्फ प्रूफ करने के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह को दौर खिलाफत है, और अपने दौर खिलाफत में किसी जंग में मुसलमानों को जोरदार कामयाबी होती है। उस जोरदार कामयाबी के बाद बहुत सारा माल गनीमत जमा होता है, मस्जिद में लाया जाता है, और उस सब को देखकर हैरानगी, किसी भी जंग में इतनी मालियत, इतना सारा माल, इतनी अमीरी मुसलमानों को कभी नहीं मिली जो इस जंग से मिली। तो थोड़ी देर बाद हजरत उमर रज़ील्लाहु मिंबर पे तशरीफ ले आते हैं, जितने भी लोग थे सबको जमा कर लिया कि आओ बात मैंने करनी है तुमसे। सहाबा कराम, बड़े बड़े सहाबा कराम भी तशरीफ फरमा, सब उस मजलिस में आ गए कि जी हजरत तो कोई बात करनी, अमीरुल मोमिनीन कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर आए और मिंबर पर आकर एक जुमला कहा कि ए उमर, तू वही है कि जिसकी माँ उसको खुश्क गोश्त चबा कर खिलाया करती थी। ये कह के आप मिंबर से उतर गए। खुश्क गोश्त चबाना अरबों के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत की निशानी थी, कि जो खुश्क गोश्त खाता था वो सबसे गरीब तरीन शख्स हुआ करता था। तो आपने फरमाया ए उमर, तू वही जिसकी माँ उसे खुश गोश्त खिलाती थी। ये कह के आप मिंबर से उतर आए। तो जो करीबी कुछ थे उन्होंने कहा, हजरत आपने सब कुछ जमा किया और बस ये एक जुमला था कि ए उमर, तू तो वो जिसकी माँ उसको खुश गोश्त चबा के खिलाती थी। तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई इसकी वजह यह है कि इतना जो माल गनीमत आया ना, तो जाने अनजाने में दिल में ये बात पैदा हुई कि ऐसी जबरदस्त कामयाबी तो अल्लाह के नबी के दौर में भी कभी नहीं हुई है जो अब हुई है। तो जब ये ख्याल आया और इस ख्याल की तरफ मेरी तवज्जो गई, तो ये मेरे नफ्स के अंदर की शरारत थी जो मुझे इस तरफ लेके जा रही थी कि तेरी कामयाबियां जो हैं वो नबवी दौर की कामयाबियों से भी बड़ी कामयाबियां हैं। तो इस नफ्स को सीधा करने के लिए मिंबर पे बैठ के सबके सामने कहा कि तू तो वो था, तेरी हकीकत तो ये थी कि तू खुश गोश्त चबा के खाया करता था। नफ्स को नहीं पहचानने की एक वजह तो यह है कि इंसान कबूल ही नहीं करता है अपने नफ्स की बुराई को, दूसरा यह कि नफ्स भी बड़ी शरारत करता है। बहुत ज्यादा इंसान इस नफ्स को पहचानने के बाद भी नफ्स कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है इंसान को गुमराह करने के लिए। इसलिए अकाबरीन ने इस नफ्स के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हमें इस नफ्स के दाव पेज समझने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस नफ्स की इस्लाह भी फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। صلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.